SBS हिंदी।
ब्रिस्बेन के रहने वाले मनीष मंजू त्रिपाठी को अंदाजा भी नहीं था कि वीकेंड पर आराम फरमाते हुए एक अनजान नंबर से आया कॉल उठा लेना उन्हें इतना महंगा पड़ने वाला है। वो बताते हैं,
पिछले दिनों एक्चुअली वीकेंड था, बस एज यूजुअल मैं रिलैक्स ही कर रहा था, अभी एंजॉय कर रहा था वीकेंड अपना फैमिली के संग। और शाम को, ये शाम का वक्त है, करीब मेरे ख्याल 5 बजे का वक्त होगा, मेरे को एक मोबाइल से कॉल आता है। तो एज यूजुअल मोबाइल से कॉल था, तो जनरली तो मैं अननोन नहीं उठाता हूँ। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ उस दिन, मैंने कहा चलो मोबाइल से, क्या पता कोई मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाह रहा हो। और मैं फोन उठाता हूँ मोबाइल पे और ये मुझे कॉल पे, ये जो डेफिनेटली इंडियन ही है कोई, और डेफिनेटली वो फेक एक्सेंट ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट पकड़ के, जो कि बहुत इजीली पकड़ में आ जाता है, अब आप इतने साल से रह रहे हो तो फेक और ओरिजिनल एक्सेंट तो पता पड़ जाता है। तो बस अपने फेक ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में, हेलो मैट, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फलाना कंपनी, कॉम्पनसेशन कंपनी, ऐसा बोल रहा हूँ, और हमें पता पड़ा है कि आपका एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट अभी।
ऐसा कॉल करने वाले को क्लेम फार्मर कहते हैं। ये कॉल करने वाले उन लोगों की तलाश में होते हैं जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ हो। ये लोग वादा करते हैं कि CTP इंश्योरेंस के जरिए आपको खूब धन दिला सकते हैं।
क्लेम फार्मिंग इज एसेंशियली द प्रोसेस वेयर अ पर्सनस पर्सनल डिटेल्स आर ऑब्टेन्ड बाय समवन फ्रॉम अ मार्केटिंग कंपनी और सम सॉर्ट ऑफ फर्म। They obtain that information for the purpose of then selling it to a third party, usually a lawyer or a law firm that they have a contract with, who then encourage that particular person to pursue a personal injury claim. And they basically don't give them an option as to who will represent them, as it all depends on who that claim farmer has a contact or connection with. The practice has been widely reported in the UK and the US, with reports of it as far back as in the early 2000s. But here in Australia, it's a relatively new concept that has only just, you know, as you probably would be aware, has recently had a lot of media attention in the last 12 to 18 months.
ये पूरी प्रैक्टिस अवैध इसलिए है क्योंकि दीपक पटेल कहते हैं कि किसी भी वकील को इस तरह ग्राहकों को कॉल करके इंश्योरेंस का दावा करने के लिए उकसाने की इजाज़त ही नहीं है। क्वींसलैंड में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ वकील दीपक पटेल समझाते हैं,
पहली बात तो ये है कि जो आपको जो क्लेम फार्मर कॉन्टेक्ट करता है वो ही गलत है। वो ये कह के आपको कॉन्टेक्ट करता है कि हम पर्सनल इंजरी क्लेम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं या मोटर एक्सीडेंट क्लेम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, सो दे ट्राई टू कन्विंस यू, हालांकि ऐसा कॉन्टेक्ट करना ही इल्लीगल है।
कानून वकीलों को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वे लोगों को कॉल करके उन्हें मुकदमे करने के लिए उकसाएं। इसलिए ये कोल्ड कॉलर्स वकीलों के हवाले से कॉल करते हैं और ये किसी को भी कॉल करके आजमाते हैं, जैसे मनीष को आजमाया गया। मनीष का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन्हें पहले भी इस तरह के कॉल आ चुके थे, इसलिए इस बार जब कॉल आया तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया।
इस बार मैंने थोड़ा सा रोल प्ले किया, मैंने उनको ये नहीं बोला कि मेरा नहीं हुआ, तो मैंने उनको बोला कि हाँ जी मेरा हुआ एक्सीडेंट, बताइए आगे क्या प्रोसेस है, जस्ट सो दैट कि मैं उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ कि ये लोग क्या बेसिकली करते क्या है। तो बोला कि थैंक यू कन्फर्म करने के लिए और मैं आपका कॉल ट्रांसफर करता हूँ अभी अपने सीनियर सुपरवाइजर को। मैंने कहा फाइन, ठीक है, चलो देखते हैं। और उसने कॉल ट्रांसफर किया, ये दूसरा बंदा उठाता है फोन, अभी दूसरा बंदा फिर फोन उठा के मुझसे बोलता है कि हाजी मनीष जी, और इंग्लिश में बोलता है, डिटेल्स बताइए अपने, ये वो, थोड़ा डिटेल्स अपने बारे में। मैंने कहा डिटेल्स मैं अपने आप बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपके थोड़े डिटेल्स ले लूं, मैंने कहा उसके बाद मैं बताऊंगा, पहले मैं वेरीफाई कर लूं। तो मैंने बोला आप किस कंपनी से बोल रहे हैं, तो बोला मैं फलाना कॉम्पनसेशन इससे बोल रहा हूं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपका ऑफिस कहाँ है, तो बोला कि मेरा ऑफिस यहाँ पर है, मैं पता नहीं कहाँ बोला, मेलबर्न या ब्रिस्बेन, बोला मेरा ऑफिस यहाँ पर है। मैंने कहा आप रजिस्टर्ड है, मैंने कहा ये मोबाइल से आपका क्यों कॉल आ रहा है। तो द मोमेंट उसको ये पता पड़ा कि अरे ये तो उसकी इंटरोगेशन हो रही है, तो वो हिंदी में आ गया बात करने पे, और फिर उसने मुझे अब्यूज किया और लोग ऊपर से मुझे अब्यूज करके फोन काट दिया, और वो भी मुझे गाली देके। मतलब मैंने कहा हाइट्स हो गई यार ये तो, मतलब हाइट्स तो लेकिन तब हुई नहीं थी, मुझे तो अंदाजा नहीं था कि और कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है मेरे पीछे, तो मुझे उसका तो अंदाजा ही नहीं था। तो मैं अब क्या कॉल करता उस नंबर पर, मैंने ट्राई किया जिस मोबाइल से आया था, मैंने कहा चलो जरा देखते हैं, वो मोबाइल नंबर से किया था, मैंने कॉल बैक किया तो ऑफकोर्स वो तो सीधा वॉइस मेल पर चला गया, और मेरे फोन रखते ही मुझे विदिन आई 5 सेकंड के अंदर मुझे फिर एक मोबाइल नंबर फोन आया और मैं फोन उठाता हूँ, मैं बोलता हूँ हेलो, तो मुझे ये इंडियन बंदा, दूसरी आई थिंक इंडियन बंदा मुझे बोलता है हेलो डिड यू ट्राई कॉलिंग मी, मैंने बोला नहीं आई डिडंट ट्राई कॉलिंग यू, काटते ही मेरा फोन फिर बजने लगा एंड फिर मैंने उठाया, इधर कोई लड़की है जी इंडियन जो बोलती है कि आपने कॉल किया था, मैंने कहा नहीं जी मैंने कोई कॉल नहीं किया आपको, तो बोली नहीं आपका मिस कॉल पड़ा हुआ मेरे फोन पर, मैंने कहा मैंने कॉल नहीं किया आपको, और देखते ही देखते आप बिलीव नहीं करेंगे मैं फोन रखता हूँ और विद इन एवरी 5 मिनट के अंतराल में, 5 मिनट के गैप में मुझे फोन पे फोन, मुझे फोन पे फोन आने लगे और ये दूसरी दूसरी जगह से, और मैंने करीब मेरे ख्याल 8-9-10 फोन तो उठाए होंगे, और लोग कोई बोल रहा है मैं एडिलेड से बोल रहा हूँ और मैं जमील बोल रहा हूँ आपने मुझे फोन किया, मैं मेलबर्न से बोल रहा हूँ आपने, मैंने कहा नहीं मैंने फोन नहीं किया, और वो जो फोन आने लगे वो जेन्युइन थे, मतलब मुझे इतना पता पड़ा कि ये जेन्युइन लोगों को की कॉल आ रहे हैं मुझे।
अब मनीष को एहसास हुआ कि वे फंस चुके हैं। उसके बाद मनीष ने कई जगह शिकायत करके अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस को, टेलीफोन कंपनी को सूचित किया। मनीष तो समय रहते संभल गए और बच गए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो शिकार हो जाते हैं। नताशा बताती हैं कि क्लेम फार्मिंग का शिकार हुए लोगों को निजी और कानूनी दोनों पहलुओं से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
Sort of give you know it's giving people false hope in terms of what their claim might be worth, and I can't speak for other states, but I know that in South Australia, you know our system has changed dramatically in the last you know 4 years. We had a huge overhaul in 2013, where there's a lot of thresholds now put in place in personal injury claims. So it's not a straightforward case as to if someone's going to have a successful personal injury claim or not following a car accident. So for, I guess, a claimant to get a phone call from someone who they, you know, somehow got their personal information from, and then being told that you're going to get $40,000 is not necessarily the case.
हालांकि ये प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया में नई है। नताशा कहती हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कुछ हिस्सों में इस तरह के मामले काफ़ी सामने आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये मामले अभी कुछ महीनों में ज़्यादा प्रकाश में आए हैं। लेकिन सरकारें इस समस्या को समझ रही हैं, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। दीपक पटेल कहते हैं कि क्वींसलैंड में तो कानून में बदलाव की भी तैयारी हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप स्वयं सावधान रहें, जागरूक रहें कि किसी तरह के धोखे का शिकार ना हो जाएं। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, नताशा बताती हैं।
And I would suggest to people what they can do is try and get as much detail from the person themselves, try and find out where they're actually calling from, what their name is, what is their involvement or their role in the claim. Get those sort of details, and if they're being very hesitant in providing that information, I think that's when someone should, when the person should, you know, end the phone call and perhaps contact the law society.
भारत में बसों पर अक्सर लिखा रहता है ना कि यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है, यहाँ भी वही बात लागू होती है।
आपका समुदाय, आपकी बातें, SBS हिंदी। sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।